अध्याय 23 विश्वसनीयता रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता के अर्थ। विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण प्राप्तांक का एक प्रमुख गुण होता है। सरल अर्थ में विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांकों की परिशुद्धता एक्यूरेसी से होता है। वैज्ञानिक अर्थ में विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांक के संगति से होता है जो उसके पुनरुत्पादकता के रूप में दिखलाई देती है। कोई भी परीक्षण जब वर्तमान समय तथा कुछ दिन बाद बीतने के बाद संगत परिणाम देता है तो यह कहा जाता है कि उसके प्राप्तांकों में संगति कंसिस्टेंसी है। ऐसी संगति को कालिक संगति टेम्पोरल कंसिस्टेंसी कहा जाता है। कोई परीक्षण को उस परिस्थिति में भी संगत परिणाम कंसिस्टेंस रिजल्ट्स देते हुए मान लिया जाता है जब परीक्षण के एकांशों के कुछ सेट पर आने वाले प्राप्तांक करीब करीब उन प्राप्तांकों के तुल्य होते हैं जो परीक्षण के बाकी एकांशों के सेट पर मिले हैं। प्रायः इस तरह की संगति ज्ञात करने के लिए परीक्षण को किसी प्रतिदर्श पर एक ही बार क्रियान्वयन करना होता है। एकांशों की ऐसी संगति को आंतरिक संगति कहा जाता है। परीक्षण प्राप्तांक की विश्वसनीयता से तात्पर्य इन दोनों तरह की संगति अर्थात कालिक संगति तथा आंतरिक संगति से होता है। स्पष्टतः तब विश्वसनीयता से तात्पर्य परीक्षण प्राप्तांकों में संगति कालिक संगति एवं आंतरिक संगति से होता है। मार्शल एवं हेल्स ने परीक्षण की विश्वसनीयता को इसी आलोक में परिभाषित करते हुए कहा है, कोट, परीक्षण प्राप्तांकों के बीच संगति की मात्रा को ही विश्वसनीयता कहा जाता है, अनकोट। पैराग्राफ चेंज। स्पष्ट हुआ कि परीक्षण की विश्वसनीयता के दो पहलू हैं, कालिक संगति या कालिक स्थिरता तथा आंतरिक संगति। इन दोनों संगति का मापन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करके किया जाता है। जिस सहसंबंध गुणांक से परीक्षण की आंतरिक संगति का पता चलता है उसे आंतरिक संगति गुणांक या अल्फा गुणांक भी कहा जाता है। स्पष्ट हुआ कि परीक्षण प्राप्तांकों की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए उसी परीक्षण के प्राप्तांकों का दो सेट होता है, इसके बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। शायद यही कारण है कि परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित करते हुए यह भी कहा जाता है कि विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म संबंध होता है। रिलायबिलिटी इज द सेल्फ कोरिलेशन ऑफ अ टेस्ट। एक उदाहरण मान लिया जाए कि इस बुद्धि परीक्षण को 26 छात्रों पर आज क्रियान्वयन किया गया है और 14 दिन के बाद पुनः उन्हीं छात्रों पर क्रियान्वयन किया गया। यदि बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता है तब तो दोबारा क्रियान्वयन होने पर प्रत्येक छात्र को लगभग वही प्राप्तांक आएगा जो पहली बारी में आया था। जैसे यदि ए से पहले बारी में 50 अंक प्राप्त किए गए हैं तो संभव है कि दूसरी बारी में उसे 45 या 53 अंक आ जाए, परंतु यह संभव नहीं कि दोबारा उसे 10 अंक या 90 अंक आ जाए। और यदि ऐसा होता है तो उसका स्पष्ट मतलब हुआ कि उस बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय नहीं है, अर्थात कम से कम उसमें कालिक संगति टेम्पोरल कंसिस्टेंसी नहीं है। उसी तरह से मान लिया जाए कि बुद्धि परीक्षण में 80 एकांश है जिन्हें दो भागों या सेटों में बांट दिया जाता है। सभी विषय संख्या वाले एकांश ऑड नंबर्ड आइटम जैसे 1, 3, 5, 7, 79 वाले एक तरफ तथा सभी सम संख्या वाले एकांश इवन नंबर्ड आइटम जैसे 2, 4, 6, 8, 80 वाले एक तरफ होंगे। इस तरह से यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को दो कुल प्राप्तांक होंगे। पहला प्राप्तांक सभी विषम संख्या वाले एकांशों पर तथा दूसरा प्राप्तांक सभी सम संख्या वाले एकांशों पर। यदि बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय है तो प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों तरह के एकांशों के सेटों पर आने वाला कुल प्राप्तांक लगभग समान होगा। जैसे यदि बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय है तो ए को यदि विषम संख्या वाले एकांशों पर 20 अंक आता है तो सम संख्या वाले अंकों पर 18 या 23 आ सकता है, परंतु यह नहीं होगा कि इस पर 5 या 35 आ जाए। यदि ऐसा होता है तो यह समझा जाएगा कि परीक्षण प्राप्तांकों में विश्वसनीयता विशेषकर आंतरिक संगति नहीं है। पैराग्राफ चेंज। विश्वसनीयता का तार्किक अर्थ या तकनीकी अर्थ, लॉजिकल और टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। परीक्षण विशेषज्ञों ने विश्वसनीयता का एक तार्किक अर्थ भी बतलाया है। इस अर्थ को तकनीकी अर्थ भी कहा जाता है, जिसे समझने के लिए प्राप्त अंक, वास्तविक अंक तथा त्रुटि अंक का अर्थ समझना जरूरी है। प्राप्त अंक से तात्पर्य उन अंकों के योग से होता है जिसे व्यक्ति परीक्षण पर प्राप्त करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण पर 80 एकांशों का सही उत्तर देता है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक एक अंक दिए गए हैं, तो उस व्यक्ति का प्राप्त अंक 80 होगा। वास्तविक अंक ट्रू स्कोर से तात्पर्य व्यक्ति के वैसे प्राप्त अंक से होता है जो संयोग घटनाओं या परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होता है। सच्चाई यह है कि वास्तविक अंक एक सैद्धांतिक मान थ्योरेटिकल वैल्यू है जो व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान को बतलाता है, और वास्तविक अंक का पता वास्तव में होता नहीं है बल्कि इसे मान लिया जाता है। प्राप्त अंक ऑब्टेंड स्कोर को ही वास्तविक अंक का एक रूप मान लिया जाता है। कुछ परीक्षण विशेषज्ञों ने वास्तविक अंक को व्यक्ति द्वारा परीक्षण पर कई प्रयासों में प्राप्त अंकों का औसत माना है। त्रुटि अंक से तात्पर्य वैसे अंक से होता है जो प्राप्त अंक तथा उसके सैद्धांतिक मान या वास्तविक अंक का अंतर होता है। जैसे यदि प्राप्त अंक 60 है तथा वास्तविक अंक 58 है, तो त्रुटि अंक 60-58=2 होगा। इसे मापन की त्रुटि एरर ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। इस तरह से प्राप्त अंक के दो भाग होते हैं, वास्तविक अंक ट्रू स्कोर तथा त्रुटि अंक एरर स्कोर। किसी भी प्राप्त अंक में ये दोनों तरह के अंक सम्मिलित होते हैं। इसे सूत्र रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है, प्राप्त अंक = वास्तविक अंक + त्रुटि अंक, ऑब्टेन स्कोर = ट्रू स्कोर + एरर स्कोर। कभी कभी प्राप्त अंक बहुत अधिक ऊंचा हो जाता है क्योंकि संयोगवश व्यक्ति अटकलबाजी के आधार पर सही उत्तर देने में समर्थ हो जाता है, परंतु कभी कभी प्राप्त अंक बहुत कम हो जाता है क्योंकि संयोग व्यक्ति की मदद नहीं कर पाता है। यही है कि कई ऐसे प्रयासों में यह उम्मीद की जाती है कि संयोग का नियम लॉ ऑफ चांस क्रियाशील होगा और धनात्मक त्रुटि एवं ऋणात्मक त्रुटि एक दूसरे को काटेंगी और तब त्रुटि शून्य हो जाएगी। पैराग्राफ चेंज, चूँकि प्राप्त अंक को वास्तविक अंक तथा त्रुटि अंक में बांटा जाता है, अतः इस पर आधारित परीक्षण के कुल प्रसरण को भी दो भागों में बांटा जाता है, वास्तविक प्रसरण तथा त्रुटि प्रसरण। प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होता है। अंकों के माध्यम से हुए वर्गीकृत विचलनों के योग को n से विभाजित करने पर जो भागफल आता है प्रसरण कहलाता है। तकनीकी अर्थ या तार्किक अर्थ में प्राप्त प्रसरण ऑब्टेंड वेरिएंस तथा वास्तविक प्रसरण का अनुपात रेशियो ही विश्वसनीयता कहलाता है। जैसे यदि किसी परीक्षण पर प्राप्त प्रसरण 150 है तथा वास्तविक प्रसरण ट्रू वेरिएंस 100 है, तो इसका अनुपात 100/150=0.666=0.67 होगा। तालिका 22 में प्राप्त अंक वास्तविक अंक तथा त्रुटि अंक माध्य प्रसरणों तथा मानक विचलनों के संबंध को काल्पनिक रूप से अधिक स्पष्ट किया गया है। तालिका 22 से स्पष्ट है कि इस परीक्षण पर आए वास्तविक अंकों का वास्तविक प्रसरण 105 है तथा प्राप्त अंकों का प्राप्त प्रसरण परीक्षण प्राप्त अंकों की विश्वसनीयता है। यह विश्वसनीयता तार्किक अर्थ या तकनीकी अर्थ में है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राप्त प्रसरण का 87% वास्तविक प्रसरण है। अगर किसी परीक्षण की विश्वसनीयता शून्य होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि त्रुटि प्रसरण अधिकतम है। यदि उसी तरह से किसी परीक्षण की विश्वसनीयता 1.00 है तो इसका मतलब यह हुआ कि त्रुटि प्रसरण वहाँ शून्य है। पैराग्राफ चेंज, विश्वसनीयता आकलन की विधियाँ मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। किसी भी परीक्षण प्राप्तांक की विश्वसनीयता के आकलन के कई विधियों की चर्चा की गई है। इन विधियों में निम्नांकित 4 विधि अनेक लोकप्रिय हैं जिसके द्वारा विश्वसनीयता के 4 प्रकार का पता चलता है। और परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ब आंतरिक संगति विधि इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, स समानांतर फॉर्म मेथड विधि पैरेलल फॉर्म मेथड, द प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता स्कोरर रिलायबिलिटी। इन तीनों विधियों का वर्णन निम्नांकित है। अ परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इस विधि में परीक्षण को एक ही प्रतिदर्श पर 2 बार प्रायः 14 दिन के अंतराल पर क्रियान्वयन किया जाता है। इस तरह से एक ही परीक्षण प्राप्तांकों के दो सेट प्राप्त हो जाते हैं। बाद में प्राप्तांकों के इन दोनों वितरणों या सेट में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यही का परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है और इसे तकनीकी अर्थ में कालिक स्थिर गुणांक कहा जाता है। इससे मूलतः यह पता चलता है कि एक दिए हुए अंतराल पर परीक्षण प्राप्तांक कितना स्थिर है या कितना संगत है। यदि कालिक स्थिरता गुणांक अधिक ऊंचा जैसे 0.89, 0.95 आदि होता है तो स्पष्टतः यह पता चलता है कि परीक्षण प्राप्तांकों में कालिक संगति है। इस विधि में त्रुटि प्रबल का स्रोत समय प्रतिदर्शन होता है, पैराफ चेंज। एक उदाहरण मान लिया जाए कि एक बुद्धि परीक्षण है जिसमें 50 एकांश हैं और इसकी विश्वसनीयता परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि से ज्ञात की जा सक रही है। इस परीक्षण को 100 छात्रों पर क्रियान्वयन पहले कर लिया जाएगा और सभी छात्रों का परीक्षण पर आए कुल प्राप्तांक मालूम कर लिया जाएगा। 14 दिन के बाद पुनः उस परीक्षण को छात्रों के वही समूह पर दोबारा उसी परिस्थिति में क्रियान्वयन किया जाएगा। इस बार भी प्रत्येक छात्र का कुल प्राप्तांक प्राप्त कर लिया जाएगा। इस तरह 100-100 प्राप्तांकों का दो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा और इन दोनों में सहसंबंध ज्ञात कर लिया जाएगा, जो परीक्षण की परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता होगी। इस विधि के कुल गुण तथा दोष हैं। परीक्षण के प्रमुख गुण मेरिट्स निम्नांकित हैं। एक, इस विधि का सबसे प्रमुख गुण इसकी सरलता है। इस विधि द्वारा प्रशिक्षण प्राप्तांक की विश्वसनीयता ज्ञात करने में कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। दो, इस विधि में मितव्ययिता का गुण है क्योंकि इसमें कम खर्च तथा श्रम लगता है। तीन, स्थिरता गुणांक ज्ञात करने में इस विधि की निर्भरता पूर्ण रूपेण बतलाई गई है। पैराग्राफ चेंज। इन गुणों के बावजूद इस विधि की कुछ परिसीमाएं या दोष हैं जो निम्नांकित हैं। एक, यह विधि समय लेने वाली विधि है। जब तक परीक्षण के दो क्रियान्वयन नहीं हो जाते हैं तब तक इस विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करना संभव नहीं है। परीक्षण के दो क्रियान्वयनों के बीच का समय कभी कभी कुछ महीनों तक का होता है और तब ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता को परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए उतने समय तक इंतजार करना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। दो, इस विधि में शोधकर्ता यह मानकर चलता है कि छात्रों का व्यक्तियों की शारीरिक अवस्थाएं एवं मानसिक अवस्थाएं एक समान होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोबारा क्रियान्वयन होने के समय व्यक्ति का स्वास्थ्य, सांवेगिक अवस्था एवं अभिप्रेरणात्मक अवस्था ठीक वैसा ही नहीं रहता है जैसा कि पहले बारी के क्रियान्वयन में था, बल्कि इन अवस्थाओं में उतार चढ़ाव हो जाता है। फलतः परीक्षण प्राप्तांकों में अनावश्यक परिवर्तन आ जाते हैं और इस विधि द्वारा परीक्षण की विश्वसनीयता का सही सही आकलन नहीं हो पाता है। तीन, इस विधि में परिपक्वता का प्रभाव भी पड़ता है। जब प्रतिदर्श में छोटे छोटे बालक होते हैं जिन पर परीक्षण क्रियान्वयन किया जाता है और दोनों क्रियान्वयनों के बीच का समय लंबा जैसे कुछ महीनों का होता है, तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षण को दोबारा क्रियान्वयन होते समय बालकों में परिपक्वता स्तर पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, परिपक्वता में यह विकास सभी बालकों के लिए एक समान नहीं होता है। इसका स्पष्ट प्रभाव यह होता है कि त्रुटि प्रसरण एरर वेरिएंस बढ़ जाता है और परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता कम हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। चार, अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि परीक्षण के दोनों क्रियान्वयनों के बीच समय अंतराल में विभिन्नता होने से स्थिर गुणांक स्टेबिलिटी कोफिशिएंट में भिन्नता हो जाती है। अगर दोनों क्रियान्वयनों के बीच कम समय व्यतीत होता है तो स्थिरता गुणांक अनावश्यक रूप से अधिक बढ़ जाती है और यदि यह लंबा होता है तो स्थिरता गुणांक में आवश्यक रूप से कमी आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि की विश्वसनीयता की निर्भरता अधिक नहीं है। इन परिसीमाओं के बावजूद पुनर्परीक्षण विधि विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक प्रमुख विधि है। ब, आंतरिक संगति विधि, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि टेस्ट रिटेस्ट मेथड में जैसा कि हम जानते हैं समय अधिक लगता है क्योंकि एक ही परीक्षण दो बार एक विशेष समय अंतराल पर वही व्यक्तियों पर क्रियान्वयन करना पड़ता है। आंतरिक संगति विधि में यह दोष दूर हो जाता है। इस विधि द्वारा परीक्षण में एक रूपता का पता चलता है। अगर परीक्षण के सभी एकांशों द्वारा एक ही शील गुण का क्षमता का मापन होता है तो ऐसे परीक्षण को एक रूप या समरूप परीक्षण कहा जाता है और इसकी आंतरिक संगति अधिक होती है। आंतरिक संगति विधि द्वारा परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए परीक्षण को प्रतिदर्श पर एक ही बार क्रियान्वयन करना पड़ता है तथा फिर उपयुक्त विधि द्वारा आंतरिक संगति गुणांक ज्ञात की जाती है। आंतरिक संगति विधि में परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए निम्नांकित तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक विभक्ताधारित विश्वसनीयता विधि, दो रूलन तथा फ्लैनेगन सूत्र, तीन उडर रिचार्डसन सूत्र, चार गुणांक अल्फा।